वक्या हर्षसो का विवर्धना। हरे कृष्णा श्री गौरीताय राधारस बिहारी राम सम्मान की जय। सातवां वैष्णवम भगवान विष्णु के धाम अंश यम जिसको अनंत अनंत नाम से प्रचक्षते कहा जाता है विख्यात है। गर्भ गर्भ बहुता था देवक्या देवकी का हर्ष शोक विवर्धना एक साथ में हर्ष और शोक को बढ़ाने वाला अनुवाद और तात्पर्य। देवकी के गर्भ में कृष्ण का अंश प्रविष्ट हुआ जिससे उसमें कभी सुख तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह अंश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है। तात्पर्य कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात आठवें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर्युपासते ये दो श्लोक का है। पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि भगवान की इन सब लीलाओं को देख सके। कंस ने जिन छह बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीच के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शाप वश उन्हें हिरण्यकश्यपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी। ज्यों ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजे को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी यज्ञ के ऐसा करता। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित हैं, यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुजिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलदेव भैया की जय। तो आज बड़ा ही पुण्य तिथि है। आज के दिन भगवान के अग्रज बलराम जी इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए। तो आज का जो प्रवचन है, मैं प्रयास करूंगा, पहले इसको मैंने डिवाइड किया है। प्रथम जो है वह है बलराम तत्व। बलराम जी क्या है, सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को भली भांति जानते। महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत जब बालिया जाने ना करो आलस। सब चीज में आलस करना चाहिए, लेकिन सिद्धांत जानने में नहीं। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। सिद्धांत को हम समझेंगे तो कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं। सिद्धांत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धिमान होगा वो सिद्धांत को पढ़ेगा समझेगा। और बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन करना, क्या सही है और क्या गलत है। तो जो सिद्धांत जानता रहेगा वो कभी भ्रम में नहीं पड़ेगा। तो सिद्धांत के मामले में हमें बड़ा निपुण होना चाहिए, सिद्धांत समझना चाहिए। तो बलराम जी के तत्व को भी जानना बहुत जरूरी है। जो लोग सिद्धांत को नहीं जानते हैं वो कह सब एक ही हैं, कृष्ण भी वही हैं, बलराम भी वही हैं, राम जी भी वही हैं, शिव जी भी वही हैं, काली जी भी सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, सब भगवान एक ही हैं। लेकिन जो सिद्धांत जानते हैं वो जानते हैं किस प्रकार से अनेक प्रकार के भेद हैं। कृष्ण भी देखिए, कृष्ण का जो वृंदावन का लीला है वह भेद अलग है, मथुरा और द्वारिका का जो लीला है वह अलग है। वृंदावन की जो लीला है वह ब्रज नंदन श्याम सुंदर षडैश्वर्य परिपूर्ण श्याम सुंदर का लीला है, जो माधुरी भाव में लीला किए हैं। मथुरा और द्वारिका की जो लीला है वो स्वर्गमयी लीला है। जो वैष्णव होते हैं, जो नंदनंदन श्याम सुंदर के प्रेमी होते हैं, वो केवल श्याम सुंदर का ही भजन करेंगे, मथुरेश का भजन नहीं करेंगे, यहां तक कि द्वारिकाधीश का भी नहीं। फिर राम नरसिंह बामन बरा और तो कहना ही क्या है। एकांतिक भजन का मतलब होता है कृष्ण के ही बस, और किसी के नहीं। जिस प्रकार से ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां कृष्ण को ही सर्वस्व समझती थी। एक समय रास के समय जब कृष्ण अंतर्निहित हो गए, अंतर्ध्यान हो गया, कृष्ण चले गए, तो गोपियां ढूंढ रही थी। नारायण जी आ गए तो गोपियां नारायण से पूछ रही थी, अरे आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले आप तो नारायण हैं, क्या आपने कृष्ण को देखा था, कहीं कृष्ण को देखा है? वो साक्षात कृष्ण थे लेकिन नारायण का रूप धारण किए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने कृष्ण को देखा है? वैसे ही उद्धव जी जब आए और गोपियों को समझाने लगे, गोपियों को समझाने लगे, तो गोपियां कहती थी उद्धव जी आप जो बात कह रहे हैं इधर सुनते हैं इधर निकल जाता है, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वे भगवान के स्वर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे जो गोपियां समझना नहीं चाहती थी। तो जो एकांतिक भक्त हैं वो केवल कृष्ण को ही जानते हैं, अन्य किसी को नहीं। एकांतिक भक्त कोई हो सकता है, शांतरस, दास्यरस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, किसी भाव में। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी राम के एकांतिक भक्त हैं। जब महाभारत युद्ध होने वाला था केदरी वन में, हनुमान जी की मुलाकात जब भीमसेन से हुई तो उस समय भीमसेन से हनुमान जी ने कहा, जब परीक्षा हो गई भीम की, तुमने कहा कि भाई बताओ हम तो भाई हैं, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो भीम ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि अब युद्ध होने वाला है, तो आप कृपा करके हमारे पक्ष में आइए लड़ने के लिए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, मैं अर्जुन के रथ पर वो ध्वज में विराजमान रहूंगा। मैं दो काम करूंगा, एक अर्जुन के रथ पर ध्वज में विराजमान रहूंगा और दूसरा भीम जब कभी भी तुम लड़ाई करोगे, जब तुम जोर से चिल्लाओगे तो मैं इतना जोर से चिल्लाऊंगा कि शत्रु पक्ष को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो हनुमान जी भीम के वाणी में आ जाते थे बोलने के लिए। तब भीम ने कहा कि बहुत अच्छा, तो हनुमान जी का ऐसे अच्छा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। देखो मैं एक ही शर्त पर आऊंगा और वो शर्त यह कि जब अर्जुन के रथ पर हमारे प्रभु रथ हाकेंगे तब। तो भीम को आकर के कृष्ण से कहना पड़ा, कृष्ण कहे कोई बात नहीं। तो हनुमान जी जब भी दर्शन कृष्ण का किए राम के रूप में किए, यह एकांतिक भक्ति। एक ऐसी ही कथा है ब्रज में, एक बार कुछ रामानंदी साधु लोग आए। जो एकांतिक साधु नहीं है वो भूले भटके भटकते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो भटकते भटकते आ गए ब्रज में। जब ब्रज में आए, कुछ दिन ब्रज में रहे, साधु महात्मा लोगों का सेवा किए, क्योंकि साधु थे सेवा कर रहे थे। तो वृंदावन से पूरा घूम लिए, वृंदावन का लीला सुन लिए। उन लोगों की इच्छा हुई एक दिन कि चले हम लोग द्वारिका, द्वारिकाधीश का भी हम थोड़ा दर्शन करें। तो ये जो वैष्णव थे जो उन लोगों का देखभाल करते थे, उन पर भी संघ का प्रभाव पड़ गया था। उन्होंने कहा, उन साधुओं ने कहा चलिए हम लोग चल रहे हैं द्वारिका, आप भी चलिए द्वारिका जी का दर्शन करके आएंगे। तो मान गए, सब गए द्वारिका। द्वारिका दर्शन करने के बाद जब आए तो जो रामानंदी साधु थे वो साकेत चले गए, अयोध्या चले गए, और ये महात्मा वृंदावन गए। जब वृंदावन जाकर के अपना भजन साधन करने लगे, जब आंख बंद कर करके निकुंज जोनी का ध्यान करने लगे तो काला दिखाई पड़ रहा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। पहले एक समय था ये सिद्ध महात्मा निकुंज जोनी रतिके सिद्धई यायाल भी अपक्षणीया दर्शन करते थे राधा कृष्ण के लीला का, अब काला दिखाई, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बड़ा ये हुआ, लगे रोने, ताप उत्पन्न हुआ। तब ललिता सखी आई स्वप्न में और उन्हें कहा कि श्री जी आपका नाम काट दी हैं ब्रजवासियों के लिस्ट से, वृंदावन वासियों के लिस्ट से आपका नाम काट दिए हैं, क्योंकि वृंदावन को छोड़कर के आप कहां गए, मथुरा गए, द्वारका गए। तो सिद्धांत बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। सब एक नहीं है, राम कृष्ण सिंह बरा सब एक नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है हम रूपानुग वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन देखिए, चाहे कोई भी शिक्षा देखिए रूप गोस्वामी का, उन्होंने एकांतिक भजन करने का सब कुछ दिया है हम लोगों को। तो सिद्धांत बोलिया जाने ना करो आलस, उसी प्रकार से कृष्ण और बलराम के संबंध में जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि हम लोग पहले बलराम जी के सिद्धांत से समझेंगे बलराम जी कौन है, उनके बाद उनके वंश के संबंध में समझेंगे, उसके बाद उनके जन्म प्रकरण को समझेंगे, और उसके बाद समय बचेगा तो विभिन्न लीलाओं को समझेंगे। ऐसे भी फास्टिंग है ना। तो सिद्धांत से हम लोग चलते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, समस्त अवतारों के परम जो हैं वे हैं कृष्ण, जो स्वयं भगवान हैं। भागवत में क्या हो रहा है, भागवत में इसका वर्णन है प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में, जब समस्त अवतारों का वर्णन कर लिए सुत गोस्वामी तो कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे। एते चांस कला पुंस, अब तक से जितना मैं वर्णन किया उस पुरुष के या तो अंश है नहीं तो कला है, लेकिन उनमें से जो कृष्ण का मैं वर्णन किया, क्योंकि समस्त अवतारों में कृष्ण और बलराम का भी वर्णन किए हैं सुत गोस्वामी, कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु, जितना मैं वर्णन किया उसमें से कृष्ण का ही वर्णन किया, उनमें से जो कृष्ण है भगवान स्वयं। षड ऐश्वर्य पूर्ण ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण है, सर्व अवतारी सब उनसे ही निकले हुए हैं, कृष्ण स्वयं भगवान। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। एक ईश्वर नहीं है, अनेक ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है, गोविंद है, कृष्ण है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहारो द्वितीय दे श्री बलराम। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। वो क्या है, वो द्वितीय देह है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कैंडल का, एक मोमबत्ती जलाओ, दूसरा मोमबत्ती जलाओ, तीसरा जलाओ, चौथा जलाओ, सब मोमबत्तियों में हीट और लाइट एक समान है, लेकिन फिर भी जो पहला मोमबत्ती है वो आदि मोमबत्ती है। तो बलराम जी और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन वे कौन है, द्वितीय हैं। इस द्वितीय शब्द का व्याख्या करते हैं कृष्णदास कविराज, एक स्वरूप देह भिन्न मात्र का आय आद्य आद्य काय बहु कृष्ण लीला रो सहाय। दोनों एक ही स्वरूप हैं, यानी दोनों सच्चिदानंद घन हैं, सच्चित और आनंद, स्वरूपता एक है, स्वरूप लक्षण एक है, दोनों एक हैं। जय श्री श्री गौर निताय की जय, स्तराव चौमा की जय। स्वरूप लक्षण एक है, लेकिन तटस्थ लक्षण में भेद है। तटस्थ लक्षण क्या है, उनके देह में भिन्नता है, एक गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं। काम क्या है, आद्यम क्या आया विहु कृष्ण लीला सहाय, कृष्ण जो भी चाहते हैं उस लीला का पूर्ति करने वाले जो हैं वे बलराम जी हैं। बलराम जी का यही काम है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करें कृष्ण र सेवन अपने करें कृष्ण लीला र सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा र पालन शेष रूप करे कृष्ण विविध सेवन। बलराम जी जो बलराम तत्व है वे क्रिया शक्ति हैं, भक्ति शक्ति हैं और कृष्ण के सेवक हैं। क्रिया शक्ति के रूप में वो क्रिया करते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित और आनंद। सत का मतलब हमेशा रहने वाले, चित का मतलब ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का मतलब आनंद के सरोवर। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वह तीन प्रकार की है, यथा संबित, संगीत और आह्लादनी। जो संबित शक्ति है, जो बीत को जुटाने वाली शक्ति है, क्रिया करने वाली शक्ति है, वो बलराम जी हैं। जो संगीत शक्ति है यानी शेप देने वाली जो शक्ति है वो साक्षात श्री कृष्ण है। और जो आह्लादनी शक्ति है वो है श्रीमती राधारानी। तो किसी कार्य को क्रियान्वित करने से पहले जो जो वस्तुएं चाहिए उसको लाने का जो काम है वो बलराम जी करते हैं, शेप देने का जो काम है कृष्ण स्वयं करते हैं, और आनंद का जो काम है वो राधा रानी करती है। कृष्ण ही करते हैं तीन रूपों में। उदाहरण दिया गया है रसगुल्ला का। रसगुल्ला बनाने में, रसगुल्ला के बनाने के लिए जो अवयव चाहिए यथा दूध, घी, चीनी, कड़ाही, बर्तन और अनुमान क्या चाहिए, यही सब चाहिए ना रसगुल्ला है। आग, आग बिना आग कैसे बनेंगे, बात सही कर रहे हो। आग तो जो जो वस्तुएं चाहिए ये जुटाने काम कौन करता है? बलराम जी। रसगुल्ला का शेप भी होता है, कैसा होता है? गोला होता है। वो शेप कौन देता है? कृष्ण। और रसगुल्ला स्वादिष्ट है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, स्वाद कौन लेता है? राधा रानी। तो राधा रानी के थ्रू कृष्ण स्वाद लेते हैं, वो है आह्लादनीय शक्ति। तो बलराम जी पांच प्रकार से कृष्ण का सेवा करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है, गोलोक धाम निज धाम नितले ततस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुते सु ते ते प्रभाव निचया विहितांश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक धामनी निज धामनी, जो टॉपमोस्ट प्लैनेट है जिसका नाम गोलोक है, वह श्याम सुंदर का धाम है, वो यहां पर निवास करते हैं, वृंदावन धाम है। और उनके साथ में बलराम, यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी सब लोग वहां निवास करते हैं। उसके बाद में बैकुंठ का निर्माण होता है और वहां से एम्बेसडर बन करके आते हैं निर्माण करने के ये बलराम जी, जो कहलाते हैं संकर्षण। तो वहां चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो इस प्रकार से बैकुंठ जगत का निर्माण संकर्षण देव करते हैं, चतुर्व्यूह के रूप में चारों तरफ से होकर के। ये चतुर्व्यूह सर्वत्र है, यहां भी चतुर्व्यूह है, पूरब, पश्चिम उत्तर और दक्षिण है, ये चार चतुर्भुज हुए, ये भी बलराम जी का ही अंश है। तो वहां पर बलराम जी कृष्ण के साथ में पंच रूप धरि करें कृष्ण रसेवन, पांच रूप से वे कृष्ण का सेवा करते हैं। एक तो महासंकर्षण के रूप में, और वही महासंकर्षण पुनः वही आदि संकर्षण आते हैं, संकर्षण वसुदेव प्रद्युम्न अनुरुद्ध के रूप में, और फिर इस भौतिक संसार में वही संकर्षण देव कारणवक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में आते हैं। तो एक तो संकर्षण हो गए और तीन ए विष्णु हो गए, कितने हो गए? चार हो गए। और तो वही कहते हैं, देखिए क्लियर किए हैं अपन एक श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करें कृष्ण रसेवन, सब कृष्ण सेवा के लिए। और कैसे करते हैं? अपन एक करें कृष्ण लीला रसहाय, साक्षात श्री कृष्ण के लीला में सहायता करते हैं बलराम जी। भगवान के अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, उसमें से एक लीला है जिसका नाम है सृष्टि लीला। भगवान के इन लीलाओं में कोई भेद नहीं है, भक्तों के लिए चाहे सृष्टि लीला हो चाहे रास लीला हो, दोनों कृष्ण के लीला हैं। भक्तों को दोनों में आनंद आता है, इसीलिए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी सृष्टि लीला का वर्णन अच्छी तरह से के स्वर्ग विसर्ग का खूब वर्णन किए हैं। जो सामान्य लोग कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं उन लोगों को सृष्टि लीला का ये तो नींद आने लगती है, लेकिन दशम स्कंद का लीला कान खोलते सुनते हैं, उन लोगों को दशम स्कंद की लीला अच्छी लगती है। लेकिन जो कृष्ण के हैं उन्हें दोनों लीलाएं अच्छी हैं, चाहे सृष्टि लीला हो चाहे कोई भी लीला हो। तो बलराम जी सहायता करने आते हैं, कहते हैं सृष्टि लीला कार्य करे परिधरि चार काया, चार रूप में सृष्टि लीला में सहायता करते हैं। प्रथम वैकुंठ में संकर्षण के रूप में, और तीन रूप धारण करते हैं इस भौतिक जगत में देवी धाम में, और वह है कारणवक साई विष्णु, क्षीरोदक गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में। उसके बाद सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा रो पालन शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। इस प्रकार से सृष्टि लीला में जो चार सहायता करते हैं, सृष्टि के काम में सहायता करते हैं, वो भगवान का काम है। सृष्टि की रचना क्रिया शक्ति होने के चलते वो उसमें करते हैं। जैसे कि मैं बताया कि भक्ति शक्ति, क्रिया शक्ति और सेवा शक्ति, ये बलराम जी हैं। श्री कृष्ण के अनंत सेवक हैं बलराम जी, और उसका वर्णन किया गया है शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन, अनंत शेष के रूप में विभिन्न प्रकार से कृष्ण का सेवा करते हैं। उनका नाम है अनंत, अनंत मतलब अनलिमिटेड। इस सिद्धांत की बात हो रही, कितने लोग सो रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। ये साइंस है, आर्ट मतलब लीला और सिद्धांत मतलब साइंस है, ये साइंस है। नींद नहीं आनी चाहिए, सुनो आप लोग। तो इस प्रकार से बलराम जी अनंत रूप से कृष्ण के लीला में सहयोग करते हैं। अब कृष्ण के वंश का वर्णन, जैसा कि मैंने बताया था ये हिस्ट्री है, और मुझे आशा है कि साइंस वाले सोएंगे हिस्ट्री वाले जगह रहेंगे, ये होगा ना, ये हिस्ट्री है। विष्णु वंश में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जदु, उनके नाम से ही जदुवंश हुआ बाद में। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था क्रोष्टा, क्रोष्टा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था माद्री और दूसरे का नाम था गंधारी। ये महाभारत वाली माद्री गंधारी नहीं, ये दूसरे थे। कोष्टा और माद्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम था युधाजी और दूसरे का नाम था देवमीढ़। युधाजी के दो पुत्र हुए, एक का नाम था विष्णु जो बाद में विष्णु वंश बना, और दूसरे का नाम था अंधक। ये दोनों विष्णु वंशी में शामिल थे, 14 लोग शामिल थे विष्णु वंश में, जहां पर अंधक थे, विष्णु थे, भोज थे, सब मिलाकर 14 अलग अलग राजा शामिल होकर के मथुरा पर राज करते थे। तो ये युधाजी के पुत्र थे। विष्णु के दो पुत्र थे, एक का नाम था सफलक और दूसरे का नाम था चित्रक। चित्रक का कोई संतान नहीं था। सफलक के 15 बेटे थे जिसमें अक्रूर जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सफलक की पत्नी थी गांधिनी और उनके 15 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था बरांगना। कोष्टा के दूसरे पुत्र देवमीढ़ का विवाह हुआ अश्वमकी से जो कि नाग कन्या थी, और देवमीढ़ और अश्वमकी से जो पुत्र हुए उनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पत्नी का नाम था मईसा जो भोज राजकुमारी थी। इस प्रकार से सूरसेन और मईसा से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रथम जो संतान हुई थी वो थी पृथा, जिसका बाद में नाम पड़ा कुंती, क्योंकि कुंती भोज को महाराज सूरसेन ने दे दिया था, क्योंकि वो प्रॉमिस किए थे कुंती भोज को कि जब भी मेरा कोई संतान होगा मैं तुम्हें दूंगा। तो प्रथम सौभाग्यवश संतान हुई पुत्री, इसलिए वे दे दिए थे। जो 10 पुत्र थे उनके नाम थे अनकदुंदभि और वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कनवक, बसावन, सिंजय, श्याम, समीक और गंडुस। ये 10 पुत्र थे। 5 पुत्रियां थी पृथा, श्रुतदेवा, पृथुकृति, श्रुतसर्वा और राजा दिजेवी। ये 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्रियों का वंशज इस प्रकार से है। पृथा का शादी हुआ महाराज पांडु से, जिनको 5 पांडव गण जन्म लिए, 5 पांडव। श्रुतदेवा का पुत्र हुआ जगृहु जो महाभारत युद्ध में मारा गया। पृथुकृति का शादी हुआ करुष नरेश से, इनको 1 पुत्र और 1 पुत्री थी। 1 पुत्र था जिसका नाम था दंतवक्र जो कि हिरणाक्ष था पूर्व जन्म में, और 1 पुत्री हुई जिसका नाम था भद्रा जिसका विवाह कृष्ण से हुआ। उसके बाद चौथी पुत्री जो थी महाराज सूरसेन की जिसका नाम था श्रुतसर्वा, उसका विवाह हुआ छेदी नरेश से जिसका पुत्र हुआ शिशुपाल जो कि हिरणाक्ष था। ये शिशुपाल और दंतवक्र दोनों कृष्ण के द्वारा मारे गए थे, दोनों मौसेरे भाई हैं, सॉरी फुफेरे भाई, फुआ के बेटे थे दोनों। और राजादी देवी की एक पुत्री हुई जिसका नाम था मित्रविंदा जिसका विवाह कृष्ण से हुआ। इस प्रकार से 5 पुत्रियों का महाराज सूरसेन के। अब 10 पुत्रों में से वसुदेव जी जो अनकदुंदभि जो बड़े पुत्र थे उनकी 14 पत्नियां थी। उन 14 पत्नियों में से 5 जो पत्नियां थी वह कुरुवंशी महाराज संतनु के भाई बहलक की पुत्रियां थी। बहलिक जी महाभारत युद्ध में मारे गए, महाभारत युद्ध भी लड़े थे। रोहिणी, इंदिरा, वैशाखी, भद्रा और सुनामनी, ये 5 बहली की पुत्रियां थी। उसके बाद देवक की 7 पुत्रियां सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, ब्रिकदेवा, उपदेवा तथा देवकी, ये 7 पुत्रियां अन्य थी। तो 7 और 5 कितना हुआ? 12। और 2 सुतनु तथा बड़वा, 2 देवकी की दासियां थी जिसे वसुदेव जी शादी किए थे। इस प्रकार से सब मिलाकर के 14 पत्नियां थी वसुदेव जी को। वसुदेव जी की जो प्रथम पत्नी थी रोहिणी, रोहिणी से 8 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई थी। वे 8 पुत्र थे। प्रथम पुत्र थे बलराम, सारठ, सठ, दुर्दम, दमन, सभ्र, पिंडारक, उसिनर, और जो पुत्री थी उसका नाम था चित्रा। यह गंधर्व थी, गंधर्व पुत्री थी, ये अप्सरा थी, और वह जन्म लेते ही वह मर गई। लेकिन मरते समय उसकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं कृष्ण लीला में सहायक बनूं, तो वही चित्रा बाद में सुभद्रा के रूप में जन्म ली हैं, जिसका वर्णन भागवतम में आता है। उसके बाद वसुदेव के दूसरे भाई जो देव भाग थे उनके पुत्र थे उद्धव। देव सर्वा के जो पुत्र थे शत्रुघ्न और शत्रुघ्न का लालन पालन ननिहाल में हुआ, निषादों के यहां, इसीलिए वे निषाद कुमार एकलव्य हुए। जो एकलव्य थे वो भी कृष्ण के भाई थे, चचेरे भाई थे, जो देव सर्वा के पुत्र थे। कोष्टा और गंधारी जो कि विष्णु वंश के जदु के दूसरी जो पत्नी थी, कोष्टा की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी माधुरी थी, दूसरी गंधारी। कोष्टा और गंधारी से जो वंश चला उसके हुए अनमित्र, अनमित्र के हुए सिनी, सिनी के हुए सत्यक और सत्यक के हुए सात्यकी। इस प्रकार से संक्षिप्त में हरिवंश और भागवतम से यह मैंने वर्णन किया, हरिवंश पुराण भागवतम से। लेकिन आज जो है बलराम जी का आविर्भाव तिथि है, अतः हम लोग बलराम जी के संबंध में ही बात करेंगे। बलराम जी का विवाह हुआ था रेवती से। कहीं कहीं वर्णन आता है कि बलराम जी का एक पुत्र था जिसका नाम था समठक, लेकिन ज्यादा इसका वर्णन कहीं नहीं है, तो मैं केवल संक्षिप्त बता दिया इसको। अब बलराम जी के आविर्भाव के संबंध में हम लोग वार्ता करेंगे जन्म प्रकरण को। जब पृथ्वी ब्रह्मा इत्यादि के साथ में क्षीर सागर पर जाकर के भगवान के आविर्भाव के लिए प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी समाधिस्थ होकर के भगवान का साक्षात्कार किए और भगवान से उनके अवतार के संबंध में सुने। भगवान अब आने वाले हैं, 6 पुत्रों का कंस वध कर चुका है। भगवान बलराम जी 7वें पुत्र के रूप में आए हैं। सप्तमो वैष्णव धामम यम अनंत प्रत्यक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। सप्तमो वैष्णव धामम, बलराम जी प्रायः जैसा कि मैं बताया कि कृष्ण के सेवक हैं, तो जब भी धरा धाम पर आते हैं तो सेवा करने के लिए आते हैं। और सेवा करने और कराने की पद्धति है कि सेवा हम लोग छोटों से कराते हैं, बड़ों से नहीं, बड़ों का हम सेवा करते हैं और छोटों से सेवा लेते हैं। तो चूंकि बलराम जी कृष्ण के सेवा तत्व हैं, इसलिए प्रायः वो आते हैं छोटे बन करके, लक्ष्मण के रूप में आए इत्यादि। लेकिन यहां पर बड़े बन करके आए हैं, वो भी पक गए थे, बंबईया भाषा में हैं, राम जी का सेवा करते करते पक गए थे, वो भी वैसा सेवा जो कि लक्ष्मण जी समझ रहे थे कि बिल्कुल गलत काम हो रहा है। जैसे सीता का अग्नि परीक्षा, सीता का वनवास, लक्ष्मण जी लखनऊ में प्रतिज्ञा कर लिए थे जिसका नाम था लक्ष्मणपुरी, कि अब मैं जब भी आऊंगा तो छोटा बन करके नहीं आऊंगा, अब बड़ा बन करके आऊंगा। इसीलिए अब बलराम जी के रूप में आए हैं। सप्तमो वैष्णवम धामम, वैष्णवम धामम, विष्णु का धाम। वैष्णव, विष्णु का मतलब समझना चाहिए यहां पर कृष्ण है, कृष्ण के धाम है वो है बलराम जी। धाम का मतलब होता है निवास स्थान। कृष्ण बलराम जी में निवास करते हैं और बलराम जी कृष्ण में निवास करते हैं, इसका परिचय देख सकते हैं उनके धारण से। कृष्ण धारण करते हैं पीताम्बर, जो कि बलराम जी का याद दिलाता है, उनकी कांति है। और बलराम जी धारण करते हैं नील वस्त्र, जो कि कृष्ण के स्वरूप को याद दिलाता है। ये दूसरे, एक दूसरे के धाम हैं, लेकिन बलराम जी एक वैष्णव धाम है, विष्णु के धाम है। अब धाम का मतलब मोटा मोटी निवास स्थान भी होता है। तो बलराम जी निवास स्थान है, कृष्ण आने वाले हैं। तो जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो सब गलियों को, नालों को सब सफाई करते हैं, फर्स्ट क्लास क्लीन करते हैं। एक्सपीरियंस है ना इसका है? मुझे याद है कि दिल्ली मंदिर के बगल में वो झोपड़पट्टी था बहुत है? और बहुत गंदा रोड था। झोपड़पट्टी का समझते हैं जो कैसा रोड होता है। वो दिल्ली मंदिर का ओपनिंग था तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले थे। अब मत पूछिए, गवर्नमेंट पूरा जुट गया पूरा सफाई करने में, सब झोपड़पट्टी को हटा दिया, फर्स्ट क्लास का रोड बना दिया। भगवान कैसे कृपा करते हैं, सब रोड बना दिया, सफाई हो गया फर्स्ट क्लास, प्राइम मिनिस्टर आया ना। वैसे ही कुछ समय पहले बीएचयू में दीक्षांतर था, समारोह था, प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे और गंगा जी के घाट पर जाने वाले थे गंगा आरती के लिए। अब मत पूछिए, बनारस तो नई दुल्हनिया के समान सजा दी गई थी, सब होकर लोग हटा दिए गए थे, सब रोड सफाई हो गया था, सब घाट फर्स्ट क्लास सफाई कर दिया गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। हनुमान जी समझ रहे हैं ना, जब सोगे तो कहां समझोगे। तो ये सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अनादिर आदिर गोविंद आ रहे हैं। तो म्यूनिसिपलिटी का काम बलराम जी करने के लिए संभाल लिए। वो आ गए कहां पर, देवकी के गर्भ में, पहले सफाई करने के लिए। पहले असुर लोग आ गए थे ना, वो जो षड गर्भ थे असुर लोग थे। तो असुर लोग का खाना पीना वो नहाते भी नहीं है, खाते पीते कुछ भी खा लेते हैं, नहाते भी नहीं है। उनके नजदीक से निकलोगे तो लगे कुछ गड़बड़ है, है? तो इस प्रकार से बलराम जी आए सफाई करने के लिए। 7 महीना लगा सफाई करने में बलराम जी को। 7 महीना तक देवकी के गर्भ में बलराम जी रहे, सफाई करते रहे, सफाई करते रहे। और जब 7 महीना हो गया तो भगवान देख लिए, जब आ गए बलराम जी देवकी के गर्भ में, गर्भो बबूह देवक्या, देवकी के गर्भ में आए, हर्ष शोक विवर्धनम। तो देवकी को ही नहीं, सभी लोगों में हर्ष और शोक हुआ। भगवान आए हुए हैं तो भगवान के आगमन से सबको हर्ष होता है, और शोक, कंस को बड़ा शोक हुआ कि बाप रे बाप, अब तो आ गया है हमारा काल। आकाशवाणी झूठा बोल दिया, लेकिन नारद जी सही सही गुरु हैं, उन्होंने ठीक बताया।
और वो आठवां बच्चा कभी भी आ सकता है, तो ये सातवां ही आठवां बन करके आया हुआ है। तो उसको शोक हो गया था, किसी का शोक प्राण गंवाने का। देवकी को भी शोक था कि छह बेटों को मार चुका है कंस, इस सातवां को थोड़े छोड़ने वाला है, इसको भी ये मारने वाला है। इसलिए हरदास देवकी को शोक हो रहा था, आपको क्या शोक हो रहा है? देवकी को शोक था। तो ये बलराम जी हर्ष और शोक दोनों दे रहे थे। बलराम जी शुरू से ही ऐसे रहे, हर्ष भी दिए और शोक भी दिए। गुस्सा हुआ बलराम जी को तो उठा लेंगे अपना हल और देखेंगे नहीं कि हस्तिनापुर गंगा जी में चला आएगा कि जमुना जी कहाँ चली जाएगी हैं? बलराम जी बलराम जी हैं, अपना आंख दिखाते हैं, लोग कांपने लगते हैं बलराम जी से। कृष्ण में वो स्वभाव नहीं है। तो हर्ष शोक। अब भगवान ने कहा कि बलराम जी बहुत दिन रह चुके, अब सात महीना हो गया, सफाई का काम हो गया, अब उनको जिस काम के लिए भेजा गया अपना वो काम करें। तब भगवान जोग माया से कहते हैं, गक्ष देवीं ब्रजं भद्रे गोप गोभी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्तिः। कहते हैं हे देवी, हे जोग माया, गक्ष देवी ब्रजं भद्रे तुम्हारा कल्याण हो। हे कल्याणमयी जोग माया, तुम आई हो, तुम जाओगी पृथ्वी लोक पर कल्याण करने के लिए। दूसरा शब्द हो सकता है, दूसरा अर्थ हो सकता है कि तुम ब्रज में जाओ, जो भी ब्रज में जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तुम ब्रज में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे? ब्रज कैसा है? ब्रज का व्याख्या करते हैं भगवान अपने मुखारविंद से, कहते हैं गोप गोभीर अलंकृत। गोप मतलब ग्वाल बाल, गोभीर मतलब गौवें, या गोभीर का दूसरा अर्थ होता है सभी ग्वाल बाल। गो मतलब इंद्रियां भी होती है। सभी ग्वाल बाल मेरे सेवा के लिए तत्पर हैं, यानी मेरे हैं। आप जाओगी तो आपका कल्याण होगा, यानी खाने पीने का कोई तकलीफ आपको नहीं होगा वहां पर, वहां पर आपके रहने का कोई तकलीफ नहीं होगा। गोप गोभी अलंकृतम, अरे गाय हैं तो दूध दही खूब मिलेगा, और मेरे सब लोग हैं तो आपका सम्मान करेंगे। कहा जाता है भूखे व्यक्ति को भोजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सम्मानित व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता होती है। जोग माया सम्मानित हैं, उनको सम्मान की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं भोजन पानी का भी व्यवस्था हो जाएगा और आपका सम्मान भी होगा। इतने भद्रे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो मानो जोग माया कहती है, प्रभु तो मेरा काम क्या है, मैं क्या करूंगी? कहते रोहिणी वसुदेव भार्या, गोकुल में जाइए, वहां पर वसुदेव जी की पत्नी एक है जिसका नाम है रोहिणी। आजकल वह आस्ते नंद गोकुले, आजकल वो नंद बाबा के पास गोकुल में निवास करती है। तो मानो जोग माया प्रश्न करती है, अरे वसुदेव जी की पत्नी है तो गोकुल में क्यों रहती है? उसको तो मथुरा रहना चाहिए वसुदेव जी के पास ना, और नहीं तो नैहर चली जाती हस्तिनापुर, तो वहां क्यों रह रही है? तो भगवान कहते हैं, अरे इसका कहानी बड़ा है, वो चिंता मत करो। वसुदेव जी के एक ही पत्नियां नहीं है, बहुत पत्नियां हैं। अन्य आश्च, एक नहीं अनेक हैं। कंस संविघ्न, कंस से भयभीत होकर के, संविघ्न होकर के, दुखित होकर के, विवरेषु वसन्तिः, वे लोग विभिन्न जगहों पर निवास कर रही हैं, गोकुल में नहीं है। यानी जोग माया के प्रश्न का उत्तर भगवान दे दिए कि किस कारण से रोहिणी जी वसुदेव जी को छोड़ करके नंद गोकुल में निवास करे। कारण क्या है? कारण है कि कंस का भय। ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगी, मुझे करना क्या पड़ेगा, काम क्या है? तो भगवान कहते हैं देवक्याज ठरे गर्भम शिशाख्यम धाम मामकम। देवकी के जठरे गर्भ, ये बड़ा ही, ये जो शब्द है बलराम जी चाहे कृष्ण सामान्य बालक के रूप में नहीं आए थे। जिस प्रकार से स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, पेट में गर्भ धारण करती है और वह जो शरीर है रक्त मांस इत्यादि से सना होता है, बलराम जी वैसे जठरे गर्भ। ये गर्भ कैसा है? पेट में नहीं है, जठराग्नि जहां निवास करती है वहां पर है। और जठरे कहने का मतलब यह है कि अग्नि के स्वरूप है। अग्नि कभी गंदा नहीं होती है बल्कि गंदा को भी साफ करती है। अग्नि पवित्र है। सीता का भी परीक्षा लेना हुआ तो भगवान राम नहीं कहे कि पानी से चले जाओ। भगवान राम क्या कहे बोलो, क्या कहे? अग्नि परीक्षा लिए ना। भगवान राम जब जा रहे थे वन में तो अग्नि देव से प्रार्थना किए कि मैं मनुष्य लीला करने वाला हूं, आप सीता को अपने पास रखिए, सीता को स्वीकार कीजिए। तो अग्नि जी पवित्र हैं, अग्नि पवित्रता की देवी है। तो जठरे शब्द का मतलब होता है अग्नि से। बलराम जी कहां थे? जठर में थे, यानी उदयदीप्यमान थे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम देवक्या जठरे गर्भ। वह गर्भ है कहां पर है पूरा पता भगवान बता रहे हैं ताकि जोग माया को ढूंढने में तकलीफ ना हो। वो जठर में है जहां पर खाना पचता है, जठराग्नि जहां निवास करती है। वो कौन है? शेषाख्यम। उनका नाम क्या है? शेष, अनंत शेष। धाम मामकाम, मानो कह रही जो मैं कि ठीक है वहां पर तकलीफ क्या है, रहने दीजिए वहीं पर। कहते नहीं नहीं, माम धामकम, वो मेरे धाम है, अब मैं आने वाला हूं इसलिए तुम जाओ और उनको लेकर के यहां पर आओ, लेकर के आओ, गोकुल में लेकर के आओ। कैसे लेकर के आओ? तो कहते हैं तन उनको, उस बालक को सन्निकृष्ट। निकृष्ट कितना सुंदर बात है, सम मतलब अच्छी तरह से, निकृष्ट मतलब पता भी न चले। इस तरह से उसको खींचना, इस तरह से ऑपरेशन करना एनेस्थीसिया दे करके है, ताकि देवकी को पता भी न चले दर्द भी न हो। एक तो दर्द होना और एक पता चलना। बालक जन्म लेता है तो प्रसव का पीड़ा होता है, एक गर्भच्युत हो रहा है, तो कहते हैं सन्निकृष्ट, उसको आकर्षित करो, खींचो वहां से निकालो। कैसे? अच्छी तरह से, ताकि देवकी को उसका प्रसव का पीड़ा ना हो, दुख ना हो। सन्निकृष्ट का व्याख्या अन्यत्र किया गया है क्योंकि जितने भी मथुरावासी हैं उसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक तो आश्रित प्रवृत्ति के हैं और एक दैवी प्रकृति के हैं। ये साधु प्रकृति के हैं। वैकुंठ, मैं आपको बोला था कृष्ण के बगल में बैठना, आप अब गड़बड़ कर दिया। आप जो भी उनके बगल में बैठा चुट्टी काटने का ये तरीका है। हाँ तो क्या बात हो रहा था? मथुरा में दो प्रकार के थे, एक दैवी प्रकृति वाले एक आश्रित प्रकृति वाले। अब दोनों को संतुष्ट करना था जोग माया को, इसी काम से, नहीं सॉरी, जो आश्रित प्रवृत्ति वाले थे वो तो बड़े खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कम से ज्यादा खुश हो जाएंगे कि चलो आठवां गर्भ यही था, मर गया, खत्म हो गया। और जो दैवी प्रकृति वाले हैं वो बेचारे दुखी हो जाएंगे, हाय हाय देवकी का आठवां गर्भ च्युत हो चुका। पहले जमाने में किसी स्त्री का गर्भ च्युत हो जाता था तो उसे बहुत पाप समझा जाता था। गर्भ च्युत हो जाना पाप समझा जाता था। ये तो पहले नेचुरल गर्भ च्युत होता था, उसको पाप समझा था। आजकल जो एबॉर्शन है, समझ लीजिए कितना बड़ा पाप है, मल्टीप्लाई कितना है। गर्भ च्युत जो नेचुरल था वो अभी पाप था, और आज एबॉर्शन है वो कितना पाप हो सकता है, लोग पाप ही समझते हैं। तो जिस स्त्री का गर्भच्युत हो जाता है लोग बड़ा उसको हे दिस गरे रे, अपने बालक को अपने गर्भ में ही मार दिया इसने, ऐसा लोग सोचते हैं। क्योंकि माँ जो खाती है बच्चे पर असर पड़ता है, तो हो सकता है कुछ खा ली होगी खराब चीज जिसे बच्चा मर गया, बड़े हे दृष्टि से लोग सोचते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को दुख भी होगा कि हाय हाय देवकी के गर्भ में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए इत्यादि। फिर कहते हैं भगवान कि ये तो काम करना है, दूसरा बात यह है कंस को कंफ्यूज भी करना था। सातवां बालक मर गया, जब कृष्ण बोले कि मैं आठवें रूप में आने वाला हूं, तो आठवां आठवां होगा सातवां होगा पता नहीं। सातवां जब खत्म हो चुका, जो आठवां होगा वो सातवां होगा कि आठवां होगा, कंस कंफ्यूज रहेगा, ताकि देवी को परेशान नहीं करेगा। तो कई एक कारण थे। तो कहें देव क्या जठरे गर्भ शिशाख्यम धाम मामकम तन सन्निकृष्ट रोहिणिया उदरे सन्निवेशय। देखिए दोनों जगह सन्निकृष्ट और सन्निवेशय, एक के गर्भ से अच्छी तरह से निकालना है और दूसरे के गर्भ में अच्छी तरह से स्थापित करना है, ये दो काम जोग माया का था। देखिए उस समय रोहिणी जी और देवकी और रोहिणी दोनों 7 महीने की गर्भवती थी। गोपाल चंपू में श्रीपाद जीव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं, अथ जोगमाया रोहिणिया सप्तमासिकम गर्भ त्रस्त विधायम देवक्या तत्विदम तस्या नियोजयामास ततश्च लब्ध सर्व समय संपद्दसे चतुर्दशे मासी श्रावणतः प्राक श्रवण नक्षत्रे समस्त सुख रोहिणी रोहिणी गुणगणनया सुषमम सुषमम सुखम सुवास। इस प्रकार से जोग माया रोहिणिया सप्तमासिकम, रोहिणी के गर्भ में जो 7 महीने का गर्भ था त्रस्ता विधाय उसको विनष्ट कर दी। यहां पर श्रीपाद जीव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि विनष्ट कर दी का मतलब एबॉर्शन कर दी, यही ना विनष्ट करने का, नहीं। रोहिणी के गर्भ में कुछ भी नहीं था, हवा था। कभी कभी हम पेट में हवा हो जाता है ना, बड़ा तकलीफ होता है, हवा निकल जाता कितना अच्छा होता है, पेट दर्द करने लगता है। तो जोगमाया ने क्या किया, वो हवा को निकाल दिया बस, और कुछ काम नहीं किया, हवा निकल गया और बाद में बलराम जी को वहां पर स्थापित कर दिया। नहीं तो यह जो शब्द है गर्भ त्रस्त विधाय, गर्भ को खंडित कर दिया, इसका मतलब कि एबर्सन किया जो कि पाप है। भगवान पाप थोड़े करा सकते हैं, तो भगवान के लिए हालांकि पाप तो नहीं हो लगे, भगवान के लिए कुछ भी पाप नहीं है, लेकिन फिर भी समान दृष्टिकोण से पाप होता है। इसलिए जीव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि वह ऐसा नहीं की, बल्कि वहां हवा था और हवा को निकाल दी। देव क्या तत्विधम तम तस्य नियोजय मास, क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि देवकी के गर्भ का जो बालक था उसको ला करके रोहिणी के घर में स्थापित करना था। ततश्च लब्ध, इस प्रकार से 7 महीने तक और रोहिणी के गर्भ में भगवान निवास किए। लब्ध सर्व समय असंपदे, अब भगवान के आविर्भाव तिथि का वर्णन सिपाजी गोस्वामी कहते हैं लब्ध सर्व समय विधम ततम तस्या नियोजमास ततश्च लब्ध सर्व समय संपद्दश चतुर्दशे मासी श्रावण प्राक श्रवण नक्षत्रे समस्त सुख रोहिणी रोहिणी गुण गणनया सुषमम शीत सुषमम सुतम सुवास। रोहिणी नक्षत्र के हैं, पूर्णिमा के दिन, श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन एक सुंदर सुषमम शीत सुमम, शीत सुमम का मतलब जिस प्रकार से चंद्रमा शीतलता को प्रदान करते हैं उसी प्रकार से जगत में शीतलता को प्रदान करने के लिए, सबको सुख देने के लिए रोहिणी जो गुणगण यम धाम भगवान बलराम जी को जन्म दी। तथा परमासी चंद्रम असमी वह, वो परमासी था, प्रायः देखा जाता है श्रावण के महीने में कि बादल छाए रहते हैं, लेकिन कृष्ण के आविर्भाव के तिथि, बलराम के आविर्भाव के तिथि दिन सब दिशाएं बदल गई थी। उस दिन शरद के चांदनी के रात्रि के समान चंद्रमा बिखरे हुए थे, पूर्णिमा का दिन था, बादल आकाश में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, चंद्रमा बाहर निकला। तथा पूर्णमासी चंद्रम अस्मिन् दर्शित विक्रम क्रम तया सिंह वधु सुशकमिव। जिस प्रकार से सिंहनी सिंह का जन्म देती है उसी प्रकार से रोहिणी जी बलराम रूपी सिंह को जन्म दी। निर्मल परिमल धारा धारतया नवकमलनी धवल कमलनी व, ठीक वैसा ही बलराम जी का कांति लग रहा था जिस प्रकार से नवकमलनी नया कमल का पुष्प खिला हो। नया कमल का पुष्प जो होता है बिल्कुल श्वेत होता है, तो श्वेत बन के बलराम जी का यहां बन गया। सर्व श्रवण संघ मंगलतया निर्वधिता जसो जसह तुम अम्बिच। इस प्रकार से जस फैलाने के लिए, कृष्ण का जस फैलाने के लिए पौर्णमासी के दिन श्रावण महीने में भगवान बलराम जी रोहिणी के गर्भ से शीतलता प्रदान करने के लिए सिंह के समान आविर्भूत हुए। अब यहां पर उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं जीव गोस्वामी। शुभ्राम सुवक्त्रम तड़िराली लोचनम नवाब्दकेशम शरदाब्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसुता रोहिणी ततश्च युक्तम सहि दिव्य बालक। ये बालक कैसा है? दिव्य बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। किन किन चीजों से युक्त हैं, क्या धारण किए हैं? सुब्रांशु, उनकी शरीर कांति जो थी शरदकालीन मेघ के बादल के समान श्वेत थी। वक्त्रम शुभ्र व्रण का शिव विग्रह था। तड़िदाली विद्युत पुंज के समान, बिजली के चमक के समान उनका लोचन था, उनका आंख था। नवाब्ध नवाब्ध के सम नूतन जलधर के समान उनका केश था। भानु प्रभाव पूर्ण चंद्रमा तुल्य उनका मुखारविंद था। ऐसे सुत को रोहिणी जी ने जन्म दिया। भगवान बलराम जी का विशेषता बतलाया गया है। सौ एस च असित वर्षा शीत वर्षा, असित वर्षा या प्रभाव, प्रभावशालियों के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला बालक होगा। सदनुज सुत दनुज, ये अकेला नहीं आएगा, इसका एक अनुज भी आएगा है? सद अनुज, अनुज के साथ में आएगा, लेकिन सुदित दनुज, लेकिन दनुजों को यानी असुरों को ये मारने वाला होगा, असुरों को ये खत्म करेगा। पालिता धेनु को, दलित धेनु कह, गाय का भरण पोषण करेगा, गाय का पालन यह बारक करेगा, लेकिन साथ साथ धेनु का सुर का यह वध भी करेगा। नारद जी, प्रलंब बाहु प्रलंब घातीय, इनका बाहु कैसा होगा, अजानुलंबित भुजौ, घुटना से नीचे। आप लोग देख लेना, आपका बाह जब घुटना से नीचे, समझना आप लोग महापुरुष हो, नहीं तो उसे पहले मत मतलब महापुरुष हो। महापुरुष का लक्षण है कि घुटना से उसका हाथ नीचे होता है। तो बलराम जी कैसे हैं, प्रलंब बाहु, लंबा बाह वाले, लेकिन प्रलंब घाइता, लेकिन प्रलंबासुर का मारने वाले होंगे। स्वयं राम नामा राम रमित द्विविद विदारयिता, स्वयं राम नाम से प्रख्यात होंगे बलराम, राम नाम से प्रख्यात होंगे, लेकिन जो राम में रमण करने वाला द्विविद बानर था पहले का, उसको वो मारेंगे। राम में रमण करने वाले राम रमित द्विविद विदारयिता, चौभविता इति ज्योतिष विदंत भावितम, इस प्रकार से ज्योतिषियों ने बलराम जी के आविर्भाव तिथि के समय उनके विषय में यह सब कहा। इस प्रकार से एक बात बड़ी दुख की बात थी, वह बात यह थी, अस्य जात कर्मणादिश्च गर्वमेव सर्वान्तनाम भी गुप्तमेव आनंद आनंदुंदवकी मंत्राया प्रतंत्राया किंतु तत्रैक दुखमिति इतः। इस प्रकार से वसुदेव जी से मंत्रणा लेकर के नंद बाबा बलराम जी का जात संस्कार किए। 14 प्रकार के संस्कार होते हैं, उसमें पहला संस्कार है जन्म लेने के बाद जात संस्कार जो कहते हैं, जान संस्कार कराए, लेकिन उसमें एक दुख की बात थी। दुख की बात यह थी कि यह बालक जन्म से ही जड़वत था। जड़ समझते हो ना, न कुछ बोलना, न चालना, न हंसना, न रोना, जड़वत थे बलराम जी जन्म से ही। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात थी, वो आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी जसोदा रानी इस बालक को अपने गोद पर लेती तो खूब हंसते थे बलराम जी, खूब हंसते थे, क्योंकि कृष्ण जसोदा के गर्भ में आ गए थे, कृष्ण जसोदा के गर्भ में आ गए थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि 15 दिन बलराम जी बड़े हैं कृष्ण से, 15 दिन बड़े हैं बलराम। अब ये मत पूछिए ऐसे कैसे हो गया, उसका कहानी बड़ा अलग हो जाएगा। तमाल जी और हमारा यही बात हो रहा था कि भाई 7 महीना में गर्भ च्युत हुआ देवकी का, उसके बाद में कृष्ण आए होंगे। तो भागवतम में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक बालक अपने समय से जन्म लिए हैं, तो कृष्ण भी 1 साल में हुए होंगे। तो 7 महीना में गर्भपात हुआ, उसके 2-3 महीने के बाद गर्भ धारण किए होंगे, तो 1 साल हुआ होगा। 1 साल के बाद कृष्ण ट्रांसफर हुए होंगे, कहां पर, जसोदा के गर्भ में, और जोग माया आई होगी। लेकिन प्रभुपाद जी कहेंगे 15 दिन। तो इसका खुलासा इस प्रकार से है कि भगवान वास्तव में आए कब देवकी के गर्भ में, चाहे जसोदा के गर्भ में, पहले तो वे उनके मन में आए, देवकी के गर्भ में नहीं आए, उनके मन में आए, वसुदेव जी के मन में, और मन से उन्होंने ट्रांसफर किया देवकी के मन में। वैसे ही नंद बाबा के मन में आए और नंद ने ट्रांसफर किया जसोदा के मन में, जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये भगत बनाते हैं, गुरु जी कहते हैं हमारे चेला लोग हैं बेटे के समान है, वो कैसे बेटे हो गए, मन के ट्रांसफर से, कृष्ण भक्ति को ट्रांसफर किए, सेमिनल ट्रांसफर नहीं हुआ है, हैं? तो इस प्रकार से कृष्ण आए और गर्भ में तब तक नहीं आए तो जोग माया आकर के ट्रांसफर नहीं करने गई। खैर तमाल जी बाद में बताए, इसको हम बाद में देखेंगे कहीं पर क्या इसका अंतर है, लेकिन प्रभुपाद जी लिखे हैं 15 दिन। तो यह भी प्रमाणित करता है जीव गोस्वामी का मंतव्य कि बलराम जी बड़े खुश हो जाते थे जब यशोदा मैया बलराम को अपने गोद पर लेती थी, क्योंकि कृष्ण उनके गर्भ में स्थित थे, इसलिए खुश हो जाते थे, अन्यथा वो जड़वत रहते थे। तो इस प्रकार से बलराम जी का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ बलराम जी का। और बलराम जी और कृष्ण बचपन से बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत प्रकार के खेल खेले, और उन खेलों में से अब मैं लीला प्रकरण के ऊपर जाऊंगा संक्षिप्त में। और अभी बहुत लीलाएं हैं, लेकिन कुछ लीलाओं को मैं ब्रज लीला तक ही रहूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, मथुरा लीला में नहीं जाऊंगा और द्वारका लीला में नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसके लिए 2 घंटा और चाहिए। तो ब्रज लीला में मुख्य करके बलराम जी ऐसे कई एक लीला किए हैं छोटा मोटा, लेकिन बड़ा बड़ा पट्टे का काम 2 किए हैं, और वो पट्टे का काम किए हैं धेनुकासुर का वध और प्रलंबासुर का वध, 2 काम किए हैं। ऐसे जब कृष्ण जब भी कहीं बाहर जाते थे तो यशोदा मैया बलराम जी को सौंपती थी। कृष्ण के कई एक सखा, उन सखाओं में सबसे कुछ लोग तो हैं नर्म सखा जो कृष्ण के छोटे को, कुछ लोग हैं कृष्ण के संग वाले, और कृष्ण कुछ अग्रज लोग हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इन सखाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से बलराम जी को यशोदा मैया एक स्पेशल असाइनमेंट दी थी, और वह असाइनमेंट था कि तुम हमेशा देखना कृष्ण कुछ गलती न कर पाए, कहीं मिट्टी न खा ले, कहीं कुछ गलती न कर पाए। वो मृतका चोरी लीला है। जोगो भाई क्यों सो रहा है? अभी जोग, अभी महामाया नहीं आई, अभी जोग माया का बात चल रहा है। मृतका चोरी में भागवतम में वर्णन किया गया है कि जो मिट्टी खाने का जो बात था, सब ग्वाल बाल लोग आ करके यशोदा मैया से उलाहना देना शुरू कर दिए कि कृष्ण ने मिट्टी खाया, कृष्ण ने मिट्टी खाया, कृष्ण ने मिट्टी खाया। मैया सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। जब बलराम जी आए तो बलराम जी से पूछे, क्या कृष्ण ने मिट्टी खाया है बलराम? तो बलराम ने कहा कि हाँ, कृष्ण ने मिट्टी आज खाया है। अब मैया को बड़ा गुस्सा हुआ कि कृष्ण ने मिट्टी खाया, और इतना चोरी करता है, माखन चोरी, ये चोरी, कितना चोरी किया, तो मन नहीं भरा तो मिट्टी खा रहा है, कंप्लेन आ रहा था। तो मैया गुस्सा की थी, तो भगवान तो लीला करना चाहते थे, मिट्टी खाए थे। जब भगवान आए तो यशोदा मैया पकड़ी कृष्ण को और कही, कृष्ण सही सही बताओ, क्या तुमने मिट्टी खाया है क्या? तो कृष्ण कहा, मैया तुमको इसने किसने कह दिया मैं मिट्टी खाया है? कहा, तुम्हारे सब ग्वाल बाल लोग कहते हैं। कहते, ग्वाल बाल का बात छोड़ दो, ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, इन लोगों को मजा आता है, देखती नहीं वो कहते हैं कि मैं माखन भी चोरी किया हूं, तुम देखा है ना मैं घर में रहता हूं, वो कहते हैं माखन चोरी। अरे तो छोटे लोग हैं, बड़े लोग भी कहते हैं, वो गोपियां कहते हैं माखन चोरी करता, मैं गया सो रहा हूं, कहते हैं माखन चोरी कर रहा है। आप जानती हो ना, इनका बात सुनो, छोड़ दो। कहा, यही नहीं कहे हैं, दाऊ जी भी कहे हैं। अब कृष्ण जब दाऊ जी का नाम सुने तो उन्हें रहा नहीं, बहुत उनको गुस्सा था दाऊ जी पर। दाऊ जी बड़े भाई थे ना, तो कृष्ण जब भी कुछ गलती करते थे, गलती कोई कर रहा हो और कोई सुधारने का प्रयास करे तो गलती करने वालों को बहुत गुस्सा होती है उस पर, जो सुधारना चाहता है, क्योंकि संसार का स्वरूप है, सुधारना लोग नहीं चाहते हैं, यहां लोग सुधारना नहीं चाहते हैं। वो गोपेश्वर प्रभु है नहीं, वो कीर्तन स्टैंडर्ड का बात चल रहा है आजकल, 50 बार प्रभुपाद लिखे हैं स्वामी स्टेप, स्वामी स्टेप। तो मैं भी कहा कि अब छोड़ दो, मरने दो लोगों को, नहीं सुधारना चाहते हैं क्या करेंगे। तो गोपेश्वर प्रभु कहते हैं, प्रभु जी यहाँ एक क्लब है जुहू मंदिर में, उस क्लब का नाम है HNS क्लब। मैं कहा अच्छा उसका मतलब क्या है HNS, हम नहीं सुधरेंगे HNS, हम नहीं सुधरेंगे। मैं कहा ऐसी बात है, तब तक मरने दें लोगों को, जो करना है करें, HNS क्लब, सब HNS क्लब के ये हैं। तो गलती करने वाला सुधरना नहीं चाहता है, चोर नहीं सुधरना चाहता है, पुलिस कितना भी डंडा मारे वो सुधरना ही नहीं, इच्छा नहीं होती है, उन्हें गुस्सा होती है। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा थी कि बार बार बलराम टोकते रहते थे। अब कृष्ण से मैं दिखाऊंगा, कहे मैया बलराम का बात मानती हो क्या? अरे बलराम का बात मानना है तो सब बात मानो ना, बलराम क्या क्या नहीं कहते हैं, आप सुनना चाहती हो तो आप सुन लो क्या कहते हैं। लगे कृष्ण कहने कि बलराम जी कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, और प्रमाण भी देते हैं, कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब श्याम शरीर, अरे नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तू काला कलर तो कहां से आ गया, तू कहां से भैया आ गया, तू ये भ्रम में मत रहा कि नंद यशोदा के तो बेटा है। और बलराम जी ये कहते हैं और ग्वाल बाल सब ताली देकर के हंसते हैं, सिखाए दे तो बलवीर, बलराम जी सिखाते हैं और ग्वाल बाल हंसते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या नहीं कहते हैं। और मैया सही बात यदि है, यदि आपको नौकर ही चाहिए था तो ये दो ये छाछ पिलाकर मुझे नौकरी करा रही हो, ये ठीक नहीं है, ले लो अपनी लकड़ी कमरिया, अब आप बहुत नाच नचा लिए, अब नहीं नाचूंगा। अब मैया का सब हो गया। अब जब मैया यह बात सुनी कि बलराम ऐसे करते हैं, कृष्ण बड़े पटु थे, बदमाशी करने पर भी और साबित भी कर दिया मैं बदमाशी नहीं किया हूं। मैया भूल गई कि कृष्ण मिट्टी खाया है। अब मैया को बड़ा हृदय में हार्ट में लग गया है, चुभ गया कि बलराम ऐसे कहते हैं कि तुम मेरा बेटा नहीं है। मैया को अब कितना कह अगर कृष्ण लगे रोने और कहे मैया नहीं आप साबित करिए दो कि मैं आपका बेटा हूं कि नहीं, बताओ सही सही बात क्या है। लगे कृष्ण रोने और मैया को साबित करना पड़ा। मैया ने कहा कि हे कृष्ण यहां पर सबसे बड़ा कौन है जिसका मैं कसम खाऊं, तुम बताओ। हम लोगों का जीवन गौवे हैं, गोधन, भागवतम बोल गए गोधन, गौवे हमारी धन है, मैं गौओं का पूंछ पकड़ करके मैं कसम खा रही हूं कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी मां हूं। जब यशोदा मैया ऐसी कही तब कृष्ण मान गए और कहे ठीक है मैया, हाथ कंगन को आरसी किया, वो लोग कह दिए हैं, आपके मन में तो बैठ गया है कि मैं मिट्टी खाया हूं, आपको डाउट हो गया मेरे ऊपर, तो ऐसा है कि मैं मुंह बाल लेता हूं, आप देख लो उसमें मिट्टी खाया, मिट्टी धरी कैसे होगा ना भाई, काला पड़ा होगा, अब देख लो। अब भगवान कृष्ण मुंह बाए और मैया लगी देखने, हैं मैया लगी देखने, वो फोटो था इधर कहां निकल गया, चला गया, पहले था इधर, निकाल दिया, पीछे कर दिया, पहले इधर था, एनीवे हाँ है, सॉरी सर, आई एम सॉरी, वो सामने चश्मा पहने दिखाई नहीं पड़ता है, देखिए देख रहे हैं। और मैया जब लगी देखने और ग्वाल हो देख रहे हैं, अरे भाई वो तो बड़ा कृष्ण बड़ा रिस्की बात कर दिया है, बदमाश कहीं मिट्टी अंदर ले लिया फिर हम लोगों क्या होगा, अब तो कोर्ट रूम था। तो जब मैया देखी, सब कुछ मैया देख ली, वो भी देखी मैया कि भगवान मिट्टी खाए हैं, कैसे मैया पूछ रही है, सब कुछ देख ली मैया वहां पर कृष्ण के मुंह में। तो एनीवे मैं कह रहा था कि बलराम जी इस प्रकार के बहुत से लीला किए कृष्ण के साथ में, मुख्य करके उनके सेवा का लीला, कृष्ण के सेवा का लीला, अहर्निश अहर्निश कृष्ण के सेवा लीला में बलराम जी लगे रहते थे। जब कृष्ण और बलराम 5 साल के हुए तो गोचारण करने के लिए पहली बार वो लोग घर से निकले हैं। देखिए जो लोग गाय चराए हैं वो लोग गाय चराने का मजा जानते हैं, शहर वाले कहां जानते हैं, हम लोग जानते हैं गाय चराने का मजा क्या होता है। गाय चराना बच्चों के लिए थोड़े कि गाय कहां चर रही है, गाय चराने का मतलब खेलना, घर में चार दीवारी में बने थे, अब आकाश के चार दीवारी में अब खेल रहे हैं। कृष्ण खेलते थे, कदम के वृक्ष पर जा करके यमुना जी में कूदना, वाह क्या मजा है उसका। ये झूलन का समय है, झूला पर बैठना, ग्वाल बाल लोग इधर से धक्का मारते हैं उधर, उधर धक्का मारते हैं इधर, ये झूलन का, कबड्डी का, चीके का, लॉन्ग जंप, हाई जंप, आजकल बरसात के दिन में मिट्टी बड़ा सॉफ्ट होता है, सोफा के समान हो जाता है, क्या मजा आता है खेलने में। कितने लोग खेले हो बताओ तो, हाँ तो रहो तो, कबड्डी वगैरह खेला है, हनुमान खेले हो, हरा तू नहीं खेला, उड़चम नहीं खेलते हैं क्या, हाँ तो डाओ ना, सो रहे हो क्या है? फिर नदी के किनारे पेड़ हो उस पर से कूदना, चोर बन करके या चोर से पकाने का, वो सब मजा ही अलग है। एनीवे समाज है ना, उसका मजा अलग है। चलिए इस प्रकार से खेल खेलने के लिए पहले दिन निकले हुए हैं। जब निकले थे तो बलराम जी का, बलराम जी आगे चल रहे थे, सब लोग पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि बलराम जी पर मुखिया थे बलराम जी, उनको उत्तरदायित्व दिया गया था। जब बलराम जी जा रहे थे, जितने पेड़ पौधे थे सब नतमस्तक हो गए थे। बड़ा सुंदर भागवतम में वर्णन हुआ है कि भगवान कृष्ण गुणगान कर रहे हैं दाऊ जी का, बलराम जी गुणगान करके, दाऊ जी देखिए किस प्रकार से ये वृक्ष आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ग्वाल बालों कहते थे कि हमें सीखना चाहिए इन वृक्षों से, जो पूर्व जन्म में भगवान के आकार को नहीं माने हैं, निराकार का उपासना किए हैं, इस जन्म में पेड़ होकर के साकार बलराम जी का लोग नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो निराकार के उपासक हैं, अब आप कहां प्रणाम करेंगे, अब यहां भगवान है तो हम प्रणाम कर सकते हैं, सस्तांग दंडवत कीजिए, अष्टांग दंडवत कीजिए, नवांग दंडवत कीजिए, जैसे भी कीजिए, दंडवत कीजिए। इस प्रकार से मानो ऐसा लग रहा था सब वृक्ष फलों से लदे हुए थे बलराम जी के स्वागत के लिए। उसके बाद जितनी पक्षियां थी वो कलरव कर रही थी, बलराम जी का गुणगान कर रहे थे, मयूर नाच रही थी कृष्ण बलराम का दर्शन कर करके, भौरे गुंजार कर रहे थे, तोते लोग बलराम जी का स्वागत कर रहे थे, स्वागतम स्वागतम, मयूर लोग सुमधुर स्वर से गान कर रहे थे। इस प्रकार से बलराम जी कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण, और बलराम जी अपना सिंह का वो बजा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी इस दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं, बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के सौंदर्य का वर्णन के, बरहा पीडम नटवर बपो, भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, नटवर बपू नाचते हुए जा रहे हैं, उल्लास के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि जेल से बाहर निकले हैं, पहले दिन बाहर जा रहे हैं। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, अपने कान पर कंदैल का जो फूल होता है, दो प्रकार का, एक पीला होता है जो शिव जी को चढ़ाते हैं, और जो ब्लूइश होता है वो कृष्ण को चढ़ाते हैं, कृष्ण धारण किए, कर्णयो कर्णिकारम, बरहा पीडम नटोरपो कर्णयो कर्णिकारम, रंध्रान वेणु, अपने वेणु के रंध्रों पर भगवान अपने उंगलियों को रखे हैं, रंध्रान वेणु, और कैसे है, अदर्श दया, मानो वेणु भगवान के अधरों का रसवादन कर रहा हो। इस प्रकार से गोप वृंदों के साथ में भगवान ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, चराकर आ रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान गए थे और उनका स्वागत सब जंगल के जितने थे, भील इत्यादि सब के सब लोग किए थे। इस प्रकार से जब वे गए तो सर्वप्रथम ये लोग तालबन गए। तालबन मधुबन के नजदीक में है। तालबन में एक असुर रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर पूर्व जन्म में बलि महाराज का पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। एक बार वह गंधमादक पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था और वही कंदरा में दुर्वासा मुनि कृष्ण चिंतन में रत थे, तपस्या लीन थे। जब वह रमणियों के साथ विहार कर रहा था, विभिन्न प्रकार के वाद्य बज रहे थे, रमणियों के पैरों के नुपुर का झंकार आ रहा था, ये सब उनके ध्यान को भग्न कर दिया। दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आ गया और आप सब लोग जानते हो दुर्वासा मुनि का गुस्सा तो बिना श्राप से कम तो है ही नहीं। उनका गुस्सा है तो श्राप जरूर देंगे, उसे कम नहीं है। तो उन्हें गुस्सा आया, हालांकि अपने समझ से यह धेनुकासुर बलिपुत्र बड़े सुंदर स्वर से लोग गा रहे थे, नाच रहे थे अप्सराओं के साथ में, लेकिन दुर्वासा जी कहते हैं जिस प्रकार से गधा रेखता है, तुम लोग गधे के समान रेख रहे हो, मैं श्राप दे रहा हूं कि जाओ तू गधा बन जाओ। और जब यह बात सुना तो बाप रे बड़ा गड़ो हो जाएगा, तब तो दुर्वासा मुनि के चरण पड़ गया। अब क्या होगा? तो क्या चिंता मत करो, वो गुस्सा के बाद तुरंत ठंडा भी आते थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जब खुश हैं तो कुछ भी दे देंगे और जब गुस्सा हुआ तो नवजोगिंद्र स्वामी बन जाएंगे। क्षणापि तुष्टम क्षणापि रुष्टम, दुर्वासा मुनि तुरंत खुश होते थे और तुरंत गुस्सा भी करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा उद्धार बलराम जी के हाथ से होगा द्वापर युग में, और वही बलिपुत्र दूसरे जन्म में बना धेनुकासुर और वह बलराम जी के हाथों मारा गया। प्रश्न उठता है कि बलराम जी क्यों मारे, कृष्ण क्यों नहीं मारे? कृष्ण नहीं मार सकते थे, बलराम जी क्यों मारे धेनुकासुर को? तो राजीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण जब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को मार लिए तो प्रहलाद जी को वचन दिए थे कि तुम्हारे खानदान में जो भी आएगा अपने हाथ से मैं कभी नहीं मारूंगा, इसीलिए कृष्ण नहीं मारे बलराम जी मारे। जो भी आए बलि महाराज को के बाद में, बलि महाराज को नहीं मारे भगवान, केवल बंधवा दिए, विमोचन को नहीं मारे बलि, वो प्रहलाद जी को वचन दिए थे कि तुम्हारे खानदान में जो भी आएगा मैं किसी को मारूंगा नहीं, और असुर ही आएंगे कोई बात नहीं मैं मारूंगा, असुर होंगे तो भी, तो असुर था तो भी नहीं मारे। एक दिन की बात है, ये सब ग्वाल बाल लोग जब गोचारण के लिए गए हुए थे तो एक दिन उन लोगों को भूख लगा था, भूख लगा था तो ये बालक थे। जब जा रहे थे तो माता लोग बताकर भेजी थी, देखो सब जगह जाना तालबन में मत जाना। क्यों? कि तालबन में एक असुर रहता है धेनुकासुर, वह मनुष्यों को मनुष्य का भक्षी है, मनुष्यों को खा जाता है, तुम लोग अपने गाय को उधर मत लेकर के जाना। कृष्ण बलराम के लीला को ये लोग जान गए थे ग्वाल बाल लोग कि कृष्ण बलराम कौन है। तो एक दिन की बात है, तालबन में गए और तालबन में जाकर के ताल फल का, ताल मतलब तड़कुल, तड़कुल का फल, तड़कुल देखे हो ना, ये तड़कुल बहुत लंबा लंबा होता है, कहते हैं कि एनीवे तड़कुल बहुत लंबा होता है, उसका फल लाल काला जैसा होता है और उसमें बग्स का स्मेल आता है, स्मेल भी अच्छा नहीं आता है लेकिन स्मेल आता है। तो सौभाग्य दुर्भाग्यवश किसी प्रकार से कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ में उधर चले गए ताल वन की तरफ, और उस ताल का बहुत सुगंध आ रहा था। तो इन लोगों को भूख लगा ही था, वे लोग कहने लगे कृष्ण से बलराम से, कहने लगे शौर्यम बत दुरैती तो इदम भोग बिना निष्फलम श्रयंते ही खरान रासनम करा तपटा इत्यतः श्री राम यतयो युगाय तथा कृष्ण दुष्टापह महाबाहु तया राम तर्क से त्वच्च विक्रमी न तथा लक्षया क्वापि लक्ष्मयस्तु संप्रति। वे कहते हैं कि हम लोग सुने हैं कि यहाँ पर एक ताल बन है, ये ताल बन में बहुत ताल के फल होते हैं और वहीं से ये सुगंध आ रहा है। हे मित्रों, कैसा रहेगा यदि हम लोग ताल फल खाएं? आज तक हम लोग चखे नहीं हैं। नाम बहुत सुने हैं ताल फल का लेकिन चखे नहीं हैं। दिल आकर्षित हो रहा है, चित आकर्षित हो रहा है, चित उधर जा रहा है उस फल को खाने के लिए। तो कुछ उपाय करना चाहिए जिससे हम फल को खा सके। तो दूसरा मित्र कहता है नहीं नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, श्रुयंते ही खरा नरासन। अरे हमने सुना है, बाप रे बाप, हमारी माँ कह रही थी श्रुयंते ही, निश्चित ही हमने सुना है खरा, वहां एक गड्ढा रहता है, नरासना जो मनुष्य का भक्षी है, हैं? और राक्षस है, मनुष्य को खाने वाला है, भैया उधर नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा कहता रे कावर कहीं का कम नो, तुम कायर आदमी है? अरे तुम नहीं देखते हमारे पास दोपट्टे हैं कृष्ण बलराम? अरे बलराम कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं, और कृष्ण का तो कहना ही है क्या है, श्री कृष्ण दुष्ट आप हम, कृष्ण बड़े सक्षम हैं दुष्टों को मारने में। तो कृष्ण कहे भाई ये तो बात सही कह रहे हो, मैं बहुत दुष्टों को मारा हूं, लेकिन यशोदा मैया स्पेशल कही है कि इस ताल वन में मत जाना है, ये राक्षस हमसे बलवान है, तो क्या आप लोग चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? कुछ बालक रोने लगे, नहीं नहीं कृष्ण मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लगे रोने के। सबको कृष्ण से बहुत प्यार था, जब कृष्ण देखे बालकों का स्वभाव, अब कृष्ण बलराम जी को चढ़ाना शुरू किए कि बा भैया अब तक से आप मुझे आगे कर करके मरवाए हो, अब देखता हूं आप क्या करते हो। तब कृष्ण ने कहा कि भाई देखो, अब मुझे जाने का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि मैया ने कहा है, और बात सही भी है कि दोपहर हो गया, सूर्य सिर पर आ गए, भूख लगा है सब लोगों को, भूख के मारे प्राण निकल रहा है, और नजदीक में ही फल पड़ा हुआ है, तो फल प्राप्त भी करना चाहिए। तो आप सब लोग और हम मिलकर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन दाऊ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे दाऊ जी हैं मतलब बड़े हैं, तो बड़े को बड़े काम करना चाहिए। तो कहते हैं श्री राम ये तो उर्गाय, अरे राम का बहुत, ये तो बड़ी बड़ी गाथा गाते हैं, अपना कहना क्या है कि मैं ये कर दूंगा मैं ये कर दूंगा, ये किया बहुत कुछ मैं कहते हैं, हैं? नहीं सॉरी, ग्वाल बालू कहते हैं कि बलराम जी का तो बहुत गाथा है। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पता है कौन है? वहां महाबाहु तया राम, अरे बड़े हाथ वाले हैं भाई, ये बड़े हाथ वाले आदमी बड़ा काम करेगा, हम तो छोटे हाथ वाले छोटे हैं छोटा काम करेंगे, ये बड़े हाथ वाले हैं इनको बड़ा काम करना, बड़ा काम है ना, ताल ऐसे भी ऊंचा है पकड़ना भी, साथ साथ यहाँ पर असुर है वो भी बदमाश लोग हैं इनको मारना है, तो बड़ा हाथ वाला बड़ा काम करेगा। कहते महाबाहु तया राम तर्क से स्वच्छ विक्रमी, और उतना ही नहीं बलवान भी बलराम जी हैं। तो बलराम जी कुछ बोल नहीं रहे थे, तो कृष्ण कहे लगता है बलराम जी भी डर गए, कोई बात नहीं छोड़ दो, अब मैं ही चल रहा हूं, मैया ने मना किया है, बलराम जी हमारा रक्षा करने के लिए भी आते हैं डेली, देखो यदि मैं मर जाऊंगा तो जाकर के मैया को बोल रहा कि बलराम जी हमारा रक्षा नहीं किए। अब इतना सुनना था कृष्ण के मुख से कि मैं मर जाऊंगा, अब बलराम जी अपने स्वरूप को याद किए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां पर आया हूं। और बलराम जी उठाए अपने हल को और चल दिए सीधे। अब चल दिए, चलो चलो सब चलो। अब ग्वाल बाल लोग बंदरी सेना के समान खूब नाचते गाते आ रहे हैं। बलराम जी अब सेना लीड कर रहे हैं। नौ तथा लक्ष्या क्वापी लक्ष्मी अस्तु संप्रति। बलराम जी कहें कि मेरा लक्ष्य कभी च्युत नहीं होता है, चलो हम देखते हैं क्या होता है, चलो ये भी च्युत नहीं हो, जरूर तुम लोग को मैं फल खिलाऊंगा, चलो चल दिए। और ग्वाल बाल लोग पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, पत्थर फेंक रहे हैं। छोटा हाथ तार तो उतना ऊपर लगा हुआ है, वो वहां तक पत्थर पहुंच भी नहीं पा रहा था, तो कोई जंप करके फेंक रहा था है? कोई तवे पर खड़ा होकर फेंक रहा था, पत्थर फेंक रहे थे, वहां तक पत्थर पहुंच भी नहीं, कुछ पहुंच भी रहा था तो आप लोगों को पता होया ना, तार कोई तोड़ नहीं सकता है, काटना पड़ता है, इतना मजबूत होता है, वो अपने जड़ को छोड़ता नहीं है तार, वो काटना पड़ता है। तब पत्थर पहुंच भी रहा था, उनके पत्थर से क्या होने वाला था है? जैसे हनुमान जी के शरीर पर वो राक्षस लोग मार रहे थे, हनुमान जी ऐसे मार दिए, ऐसे मार दिए, मच्छर जैसे लग रहे थे है? तो वैसे ही लग रहा था। तो बलराम जी के चलो साइड हटो, तुम लोग फल खाना है ना, ये क्या कर रहे, मुझे लाए हो तो मुझे करने दो। बलराम जी गए और ताड़ फल को, ताड़ के पेड़ को पकड़ हिलाना शुरू किए, बदबद भदोद पर बहुत ताड़ गिरना शुरू हुए, बहुत ताड़ गिर गए। तो बालक लोग उठाने जा रहे थे, बड़ा ये गंदा है, कितना दुर्गंध, कैसे तुम खाएगा। बलराम जी को तो मारना था धनकासुर को। इतने में आवाज चला गया धनकासुर के पास और वह पूरे खानदान के साथ धनकासुर आ गया और आकर के सीधे अपने पीछे के गधे लोग पीछे से प्रहार करते हैं, जानते हो ना, समझ गए कहने का मतलब ना, गधे लोग पीछे से प्रहार करते हैं, हैं? सिंह पीछे से नहीं करता है, आगे से करता है। तो एक गधे थे तो पीछे से प्रहार किए, माने चुगली करते हैं, समझ गया कहने का मतलब ना। तो एक गधे लोग थे, दो अर्थ हुआ, तो पीछे से प्रहार किए, किसके ऊपर प्रहार किए, बलराम जी पर। बलराम जी को हुआ गुस्सा, फिर वो गधा थोड़ा दूर गया, फिर दौड़ करके आया और पीछे प्रहार किया। बलराम के साला कहेगा क्या अपने को समझता है, पकड़े उसका दोनों पैर और घुमा करके फेंक दिए एक ताड़ पर, एक ताड़ पर फेंके और गधा उस ताड़ पर चला गया ऊपर, बिल्कुल तार टूटा, उससे दूसरा तार, तीसरा तार, बम 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 का एक तार गिर गए। कहा तुम लोग पत्थर मारता है, तार जाओ खाना है जितना खाओ है, बहुत पेड़ आ गए नीचे, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब देखे उसके वंश वाले धनकासुर के गरीब, हमारे बाप को, हमारे पति को, हमारे मुखिया को मार दिया, सब आ गए। बलराम जी सबको पकड़ गए एक एक को, जिस प्रकार से भीमसेन धृतराष्ट्र के एक एक पुत्रों को गिन गिन कर मारे थे, बलराम जी भी एक एक धेनुकासुर के खानदान वालों को गिन गिन करके मारे। इस प्रकार से सब लोगों को खत्म कर दिए बलराम जी, सब लोगों को मार दिए। इस प्रकार से प्रेम से सब लोग खाए ताल फल को और उसके बाद में आ गए, ब्रज में प्रवेश किए। तो एक तो यह लीला है जो कि ताल वन में यह घटित हुआ था, और दूसरा लीला जो है संक्षिप्त में कहूंगा, दो घंटा हो ही गया, जो कि वांडरी वन में हुआ था, वहां पर प्रलम्भासुर का वध भगवान किए थे। भगवान विभिन्न प्रकार का खेल खेलते थे। इस दिन वे लोग भांडरी वन में हरिया किरण करना चाहते थे। हरिया किरण किसे कहते हैं, हरिणा किरणन नाम बाल किरणन कम तत परिकीणितास्तु ते सर्वै द्वैदै जुगप दुप्तपतम। हरिणा किरणा में क्या होता है कि दो साइड होता है, दो साइज होता है, और दो साइज में एक गंतव्य स्थान होता है और वहां पर जा करके और लौट करके आना है। जो जितना फास्ट जा करके आएगा, जो फास्ट होगा वो अभिजेता होगा, जो स्लो होगा वो हार जाएगा। तो दो दो का टीम होता है, दो व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति दौड़ेगा यहां से उस पिलर को, नरसिंहदेव को डामक पकड़ना है, तो जो फंस जाएगा वह जो हारा है उसके कंधे पर बैठेगा और वह व्यक्ति यहां से उसको वहां पर ले जाएगा, फिर लेकर के आएगा। इस प्रकार से लीला होती थी। तो वो बांटा गया, कुछ टीम हुआ, कृष्ण का पक्ष हुआ और कुश पक्ष जो था वो बलराम जी का। तो जो प्रलम्बासुर था वह कृष्ण से डर रहा था कुछ, क्योंकि वो कृष्ण के महिमा को सुन चुका था कि कृष्ण पुतना को मारे, इसको मारे, तो सोचा पहले बलराम को मारूंगा बाद में कृष्ण को मारूंगा, इसीलिए वे कृष्ण के पक्ष में आ गया। तो बलराम जी और प्रलम्बासुर ये दोनों जोड़िया थी था। इस प्रकार से श्रीदामा लक्ष्मीदाता, लक्ष्मीदाता सुदामा सौभाग्यदाता, वसुदामा भूमिदाता, अर्जुन कृष्ण, बलराम प्रलम्बा, इस प्रकार से ये जोड़ी थी। तो जब जोड़ी हुआ, जब बलराम और प्रलम्बा का, तो प्रलम्बासुर हार गया। तो शर्त के अनुसार उसको चढ़ाना पड़ा कृष्ण को अपने कंधे पर, और कंधे पर चढ़ा करके लेकर जा रहा था। तो डिस्टेंस था, वहां से कहीं वो दूर चला गया, दूर जा रहा था। सब गौर बोल रहे क्या हो गया, क्या हो गया, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है, और बेग से जा रहा था। सोचा चलो पहले इसको हम खत्म करते हैं। यह प्रलम्बासुर भी पूर्व जन्म में यह हु नाम का गंधर्व था, गंधर्व पुत्र था, इसका नाम था विजय। और कुबेर के चैत्र वन में एक बार यह फल चुनने गया था। वहां पर ऐसा प्रावधान है कि जो भी कुबेर के चैत्र वन में फल या फूल तोड़ेगा वो असुर बन जाएगा। तो वह हु गंधर्व का जो पुत्र था जिसका नाम था विजय, वह फल जब तोड़ रहा था उसे याद भूल गया था, और बाद में वही विजय कुबेर के श्राप से बन गया था प्रलम्ब और बलराम जी के हाथों मारा गया। तो बहुत दूर लेकर गया, बाद में जोग माया से, मैंने माया से, छल से वो उड़ गया, आकाश में ले जा रहा था। बलराम जी सोचा कहां हमको ले जा रहा है, तो गंधर्व अवस्था, तब तक बलराम जी को पता चल गया कि अरे ये तो असुर है। और बलराम जी उठाए मुखा बांधे और जोर से उसके सिर पर दे मारे। ज्यों ही एक मुक्का मारे वो मुख से खून उगलते हुए पृथ्वी पर जा गिरा और अपने रूप में आ गया। पहले वह ग्वाल बाल के रूप में था, इस प्रकार से पृथ्वी पर आ गया और बलराम जी उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिए। इस प्रकार से बलराम जी ने प्रलम्बासुर का वध किया। तो ताल वन में धेनुकासुर, मांडरिक वन में प्रलम्बासुर का बलराम जी बंद किए। इस प्रकार से अनेक लीलाएं कृष्ण बलराम किए, कृष्ण और बलराम के साथ में जो लीलाएं हुई इनका वर्णन भागवतम के दशम स्कंद में अच्छी तरह से किया गया है, और कृष्ण बुक में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाए हैं, आप लोग आज जरूर इसको पढ़ना। तो मैं ये दो लीलाओं के साथ में महाभारत की लीला, द्वापर युग में सॉरी द्वारका लीला, मथुरा लीला, बहुत सी लीलाएं हैं, इसको आज आप लोग इसका आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है लीला संबंधी तमाल जी, या कुछ
बताइए? भूमिका सुधा बंद की है,
क्या हो गया माइक में? पहले बंद कीजिए बाद में चालू कीजिए, माइक को पहले बंद कीजिए बाद में चालू कीजिए, वो बीच में आ गया है। फूल चालू कीजिए, फूल दबाइए ऊपर। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं दोहरा दूंगा आपके प्रश्न को। मतलब
हरे कृष्णा हरि बोल।
एक कहीं वर्णन नहीं किया गया कि ग्वाल वाले फल खाए थे, कहीं वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कहीं वर्णन भी नहीं है खाए थे। वो खाने की इच्छा जाहिर जरूर किए थे, इसीलिए बलराम और कृष्ण लेकर गए थे। मेन चीज था वो लोग ताल वन को इन असुरों से मुक्त कराना चाहते ताकि लोग खा सकें कल के दिन, और गौवें गाय चर सके, घास बहुत घास था उधर, बहुत घास चर सके सबके कल्याण के लिए। कृष्ण और बलराम कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और कोई प्रश्न? यस ए, ए, बात मत करो भाई।
कृष्णा हेलो, कृष्णा बलराम के 15 दिन बाद
आए,
कृष्णा बलराम के 15 दिन बाद जन्म लिए, तो जन्माष्टमी
पहले आए? मैं कहा पहले आए
बलराम, पहले आए कृष्णा, बाद में आए
कृष्णा, बाद में आए
15 दिन बाद आए। हाँ। तो जन्माष्टमी 7 दिन बाद क्यों मनाते हैं अभी आज?
समाल जी उतर दीजिए। तमाल जी ने कहा कि प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है, तो मैं अब तमाल जी से आर्गुमेंट नहीं किया, मगर ठीक है बोल दूंगा, लेकिन मैंने साथ साथ यही बताया।